हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। राणावत की बेटी। अपने स्टडी के दरवाजे पर अर्जुन को देखकर प्रारब्ध जी ने गहरी सांस ली। सारी प्रॉब्लम एक साथ ही खड़ी होती है। अभी एक तरफ से सांस लेने के लिए सोचता हूँ, तब तक दूसरी तरफ से सांस रुक जाती है। ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? सब कुछ स्मूथ वे में चलता रहता है और अचानक से गाड़ी को ऐसा झटका लगता है कि सारे पुर्जे बेकार हो जाते हैं। कैसे मैं इतना मैनेज कर पाऊंगा? अर्जुन को देखकर प्रारब्ध जी ने अपने मन में सोचा। मामा, आपने मुझे बुलाया था? अर्जुन ने जैसे से याद दिलाया। अंदर आ जाओ अर्जुन, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, इसीलिए बुलाया है, प्रारब्ध जी ने हाँ में सर हिला दिया। उन्होंने गहरी नज़र अर्जुन पर डाली थी और फिर गहरी सांस छोड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कि बहुत थके से नज़र आ रहे हैं या फिर कुछ ज़्यादा ही चिंता में हैं। उनकी नज़रों का इशारा ऐसा था कि जिसको समझकर अर्जुन ने अपनी आंखें झुका ली थीं। वो चुपचाप आंखों को झुकाए हुए छोटे छोटे कदम उठाते हुए अंदर स्टडी में चला आया था। प्रारब्ध जी की स्टडी एक बहुत बड़े हॉल के जैसी थी, जिसको स्टडी नहीं लाइब्रेरी कहना ही सही रहेगा। बड़े बड़े कीमती शोकेस और बुकशेल्फ में कीमती किताबें करीने से सजाकर रखी हुई थीं। एक तरफ बिजनेस से रिलेटेड बुक्स थे तो एक तरफ धर्म अध्यात्म से लेकर दर्शन शास्त्र की मोटी मोटी किताबें सजी हुई थीं। एक तरफ इंग्लिश नावल थे तो एक तरफ हिंदी थे क्लासिकल नावल से लेकर सस्पेंस थ्रिलर, सब कुछ व्यवस्थित करके ढंग से रखा हुआ था। देश विदेश के बड़े बड़े साहित्यकारों का अच्छा कलेक्शन अलग अलग सेल्फ में रखा हुआ था, जो किसी का किताबों के प्रति उनका रुझान दिखा रहा था। प्रारब्ध जी अपनी अपनी दैनिक रूटीन में एक अच्छा खासा अपनी स्टडी कमलाईतिरी में समय बिताते थे। अंदर आकर अर्जुन ने एक बार पूरी नज़र पूरी स्टडी में डाली। बचपन में वो हमेशा यहाँ आया करता था, लेकिन किसी भी बुक को छूने की उसे पूरी तरह से मनाही थी, और अमोक को तो स्टडी में आने की भी मनाही थी। प्रारब्ध जी अपनी किताबों को लेकर बहुत सेंसिटिव थे। घर में अगर कोई मीटिंग होती थी तो नीचे वाले हॉल में होती थी। इस स्टडी में कोई मीटिंग तभी होती थी जब वो बहुत इम्पॉर्टेंट हो। प्रारब्ध जी ने उसे स्टडी में बुलाया था, यही उसके लिए सोचने वाली बात थी, लेकिन जिन नज़रों से वो उसे देख रहे थे, ये नज़रें उसे और कहीं इशारा कर रही थीं। उसने अपनी आंखें झुका ली। वो काफ़ी हद तक समझ पा रहा था कि प्रारब्ध जी उसे क्या कहना चाहते हैं या फिर क्या पूछना चाहते हैं, लेकिन मन ही मन भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि उसका अंदेशा गलत हो। आओ बैठो, प्रारब्ध जी ने उसे सामने वाली चेयर पर बैठने का इशारा किया। बिना कुछ बोले ही अर्जुन चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गया। क्या हुआ, आंखें क्यों छुपा रहे हो? कोई गलती की है क्या? प्रारब्ध जी ने अर्जुन की तरफ देखते हुए पूछा। अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दें। उसने धीरे से इनकार में सर हिला दिया। तो फिर मेरी तरफ देखकर बोलो, कल तो तुमने जो डील साइन की है उसके लिए पहले तुम्हें ढेर सारा कंग्रेचुलेशंस। हम सबको तो लगा था कि ये फॉरेनर पार्टी एक मीटिंग में तो बिल्कुल भी नहीं मानेगी, लेकिन तुमने पहली ही मीटिंग में उसको कन्विंस करके डील भी फाइनल करवा ली, जिसका मतलब है कि तुम अपने काम के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो, अच्छे रास्ते पर जा रहे हो। तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, प्रारब्ध जी मुस्कुराते हुए बोले। जवाब में अर्जुन हल्के से मुस्कुरा दिया। और बताओ, पार्टी को कन्विंस करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना आई? प्रारब्ध जी ने इधर उधर की बात करते हुए पूछा। जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मामा जी को मेरे और शुचि के रिश्ते के बारे में कुछ शक सा हो गया है, या फिर मामा जी सच जानते हैं लेकिन कितना जानते हैं ये कैसे पता चलेगा जब तक ये खुद से ना बताएं। खैर, फिलहाल मैं तुम्हें इनको सुन ही लेता हूँ, उसके बाद इनके मूड के अनुसार अपनी बात कहूँगा, क्योंकि इस वक्त मुझे ये काफ़ी बेचैन लग रहे हैं। बात अभी आंचल की है, आंचल का कोई पता नहीं लगा, ये चीज़ पहले ही इनके साथ साथ पूरे परिवार को डिस्टर्ब कर रही है। अगर ऐसे में मैं इनसे शुचि के बारे में कुछ डिस्कस करता हूँ तो और ज़्यादा परेशान हो जाएंगे, इसलिए फ़िलहाल में चुप रहना ही बेहतर होगा जब तक ये खुद से आगे बढ़कर शुचि के बारे में कुछ ना पूछें, अर्जुन ने अपने मन में सोचा। नहीं मामा जी, ऐसी कोई मुश्किल नहीं आई, कोई जगह टर्म्स और कंडीशन में कुछ मुश्किल फंस रही थी, पर हमने बातें करके उन्हें क्लियर कर लिया, अर्जुन ने आराम से बताया। अपने दिमाग से एक निश्चित कंक्लूजन पर पहुंचने के बाद अब वो कुछ रिलैक्स होकर बैठ गया था। तो फिर डील तो 5 बजे शाम को ही फाइनल हो गई थी, पार्टी भी वहां से 5 बजे ही अपने कंट्री के लिए निकल गई थी, फिर तुम्हें निकलने में वहां से देर कैसे हुई? प्रारब्ध जी ने अर्जुन के चेहरे पर अपनी नज़र जाते हुए पूछा। मैं वहां से निकल ही रहा था कि एक दोस्त का फोन आ गया था। वो भी जुहू आया हुआ था, बस उसी दोस्त से मिलने चला गया था और फिर वहीं पर लेट हो गया। अर्जुन ने छोटा सा जवाब दिया। प्रारब्ध जी खुलकर मुस्कुरा दिए।